ॐ शांति। वेरी गुड मॉर्निंग। आज की मुरली है मुखड़ा देख ले रे प्राणी जरा दर्पण में। आज बाबा ने अपनी अवस्था को चेक करने के लिए बार बार सावधानी दी है, जिसकी अवस्था अच्छी होगी उसको खुशी रहेगी, उसको सर्विस का शौक रहेगा, दूसरों को योगी बनाने का उमंग आएगा, और खुश रहेंगे, अडोल रहेंगे। बाबा कहे वो है हठयोग ऋषि, तुम हो राजयोग ऋषि। दोनों में अंतर क्या है? हठयोग ऋषि तत्व को भगवान मानते और राजयोग ऋषि भगवान को अपना बाप मानते। बाबा कहे तत्व को याद करने से पाप नहीं कटेंगे, तत्व को याद करने से बल नहीं आएगा, विकर्म विनाश नहीं होंगे और सदा खुशी नहीं रहेगी। एक तो बाबा ने कहा दे अभिमान की चेकिंग करनी है, अगर दे अभिमान है तो कच्चे हो, और बाबा से बहुत दूर हो। दूसरी तरफ कहा यह तुम्हारा शरीर अंतिम है, इसको तुम्हें संभाल रखनी है, खान पान का बहुत ध्यान रखना है, इस शरीर से ही पुरुषार्थ करके तुम्हें कर्मातीत होना है, जीते रहोगे तो बाबा को याद करते रहोगे, इसलिए खान पान में गफलत नहीं करनी है, एक रस भोजन रखोगे तो कुछ नहीं होगा, तंदुरुस्त रहोगे। और लास्ट में बाबा ने अपनी नम्रता का परिचय देते हुए फिर से दे अभिमान को चेक करने का होमवर्क दिया है। बाबा कहे मैं करता क्या हूं, कुछ नहीं करता। जैसे तुम बीमार पड़ते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर दवाई देता इंजेक्शन देता, क्या बड़ी बात है, वो तो उनका काम है, वो पढ़ते ही इसीलिए है कमाई करने के लिए, मुझे कोई कमाई थोड़ी करनी है। मैं तो तुमको केवल कहता हूँ, मैं पतित पावन हूँ, मैं सर्जन नहीं हूँ। मैं कहता हूँ तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप खत्म होंगे, ये ज्ञान देना भी मेरा पार्ट है। तो बाबा ने ये अपने नम्रता का एग्जाम्पल दिया और लास्ट में हमें भी नम्रता का पाठ पढ़ाया और चेक करने के लिए होमवर्क दिया। तो सुनेंगे बाबा के मीठे मीठे बोल। बाबा बहुत वैरायटी रीति से हमें भिन्न भिन्न पॉइंट्स देख करके सजाते हैं। आज है 14 अगस्त 2026। मीठे बच्चे, रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूं। जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी, सेवा करने का उमंग आएगा। प्रश्न है, हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, देही अभिमानी बनो। शरीर में जरा भी मोह न रहे, फिकर से फारिग हो, एक बाबा की याद में रहो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है, बाबा से दूर हो। तुम्हें इस शरीर की संभाल भी करनी है, क्योंकि इस शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। दोनों बातें हैं, शरीर में मोह भी नहीं रखना है लेकिन उसकी संभाल भी करनी है। गीत है, मुखड़ा देख ले रे प्राणी, जरा दर्पण में देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं कि जिसके योग बल से पाप कटते हैं उनको खुशी का पारा चढ़ जाता है। जितनी खुशी ज्यादा होती जाती है समझ लो हमारे पाप कटते जा रहे हैं। अपनी अवस्था को आप ही बच्चे जान सकते हैं। जब अवस्था अच्छी होती है तो सर्विस का शौक बहुत अच्छा होता है। जितना जितना शुद्ध होते जाएंगे उतना औरों को भी शुद्ध अथवा योगी बनाने का उमंग आएगा, क्योंकि तुम राजयोगी व राज ऋषि हो। हठयोग ऋषि तत्व को भगवान मानते हैं और राजयोग ऋषि भगवान को बाप मानते हैं। तत्व को याद करने से उनों के कोई पाप नहीं करते हैं। तत्व के साथ योग लगाने से कोई बल नहीं मिलता है। बल कैसे मिलेगा, वो तो घर है। तो तत्व को याद करने से आत्मा शक्तिशाली कैसे बनेगी? घर को याद करने से घर की याद आएगी। कोई भी धर्म वाले योग को नहीं जानते, इसलिए कोई भी सच्चा योगी बन वापस नहीं जा सकते। घर जाने के लिए घर वाले को याद करना पड़ेगा, तब तो बुलाएगा। केवल घर को याद करते रहेंगे तो बुलाएगा कौन, तो जा कैसे सकेंगे। अभी तुम बच्चे अपनी अवस्था खुद भी जान सकते हो। आत्मा जितना बाप को याद करेगी उतना खुशी होगी। अपनी जांच रखनी है। बच्चे भी एक दो की अवस्था को, अपनी अवस्था को जान सकते हैं। दूसरे की भी दिखाई तो पड़ती है ना, भी आजकल इस पर ग्रहचारी है, अवस्था ठीक नहीं है, और खुद की भी देख सकते हैं। देखना है हमारा कोई शरीर में भान तो नहीं है। देह अभिमान है तो समझो हम बहुत कच्चे हैं, बाबा से बहुत दूर है। बाप फरमान करते हैं, बच्चे तुम्हें अब हीरे जैसा बनना है। बाप देही अभिमानी बनाते हैं, बाप को देह अभिमान होता नहीं। उसको देह ही नहीं है तो देह अभिमान कैसे होगा। देह अभिमान तो क्या, देह का भान भी नहीं होता, वो तो टेम्परेरी आते हैं। देह अभिमान होता है किसको, बच्चों को। बाप की याद से तुम देही अभिमानी बनेंगे। अपनी जांच करते रहो, हम कितना समय याद करते हैं। एक तो देह अभिमान की जांच करो, दूसरा कितना समय याद करते हैं वो जांच करो। जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा और अपने को लायक बनाएंगे। ऐसे भी मत समझना कि कोई बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंच गए हैं, ये रिजल्ट भी दे दिया, अभी कोई पहुंचा नहीं है। कोई भी पहुंच सकता है पुरुषार्थ करके। नहीं, रेस चल रही है। रेस जब पूरी होगी तब फाइनल रिजल्ट होगी, फिर विनाश भी शुरू हो जाएगा। जब रिजल्ट आएगी फिर बाद में तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि विनाश शुरू हो जाएगा। तब तक यह रिहर्सल होती रहेगी, जब तक कर्मातीत अवस्था आ जाए। हम जब तक कर्मातीत अवस्था बने तब तक ये रिहर्सल चलती रहेगी। हम किसी की बुराई नहीं कर सकते कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इसकी अवस्था ठीक नहीं है, उसकी अवस्था ठीक नहीं है, ये बुराई नहीं कर सकते। अंत में ही सबका पता पड़ेगा। अभी तो थोड़ा टाइम पड़ा है, वो बाप दादा ने पहले कहा है, अभी टाइम नहीं पड़ा है, अभी तो लास्ट पहुंच गए हैं। ये दादा भी कहते हैं, मीठे बच्चे अभी थोड़ा समय पड़ा है, इस समय एक भी कर्मातीत अवस्था को पा न सके। बीमारी आदि होती है, इसको कर्म भोग कहा जाता है। भोगना का और किसको पता नहीं पड़ता है, भी मुझे भोगना है तो मुझे ही पता पड़ता है, और किसी को थोड़ी पता पड़ेगा, क्योंकि वह अंदर की पीड़ा होती है। बाहर से ना भी दिखाई पड़े लेकिन अंदर का दर्द है तो हम खुद समझ सकते हैं कि ये मेरा हिसाब किताब चल रहा है। अभी एक रस अवस्था किसी की भी बनी नहीं है। जितनी कोशिश करते हैं उतना विकल्प तूफान बहुत आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोशिश करनी ही नहीं है, कोशिश करेंगे तो तूफान ज्यादा आएंगे, ऐसा नहीं। हमको तो महावीर बन के और आगे दौड़ना है। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? तो जब इतना बड़ा इनाम है तो फिर दौड़ तो लगानी पड़ेगी। मनुष्य शाहूकार हैं, बड़े बड़े बंगले हैं तो खुशी रहती है, क्योंकि सुख बहुत है। वो तो दुनिया में भले बड़े बंगले हो, सुख हो, लेकिन टेंशन भी इतना होता है, स्ट्रेस होता है, दुख होता है। अभी तुम बाप से अथाह सुख लेते हो, जानते हो बाबा से हम राजाई लेंगे। शांति में इतना खुशी नहीं होती है जितनी धन में खुशी होती है। तो ये बाबा ने कौन सा कॉन्ट्रास्ट बताया कि कई लोग समझते हैं ना, इससे तो अच्छा घर में जाकर बैठ जाएं शांति से। तो बाबा ने कहा शांति में इतनी खुशी नहीं होती है जितनी धन में होती है, अर्थात सतयुग में राजाई में तो उनको खुशी होगी। सन्यासी घर बार छोड़ जाए जंगल में रहते हैं तो खुशी होती है उनों को। वो अकेले रहते हैं, गुफा में रहते हैं, शांति है, तो उनको खुशी होगी? नहीं होगी। पहले के सन्यासी तो कभी पैसा हाथ में नहीं रखते थे, सिर्फ रोटी लेते थे। और अभी अभी तो कहेंगे रोटी हम खुद बना लेंगे। अभी तो कितने धनवान हो गए हैं, सबको पैसे की चिंता बहुत है। वास्तव में राजा को प्रजा का ओना रहता है, इसलिए लड़ाई का सामान रखते हैं। पहले के राजाएं लड़ाई के सामान रखते थे, अभी भी गवर्नमेंट रखती है, बारूद रखती है, वेपन्स रखती है, उसको प्रजा की चिंता रहती है कि कोई दूसरा देश दूसरा राज्य अटैक न कर ले। सतयुग में तो राजाएं ये सब हथियार नहीं रखेंगे, क्योंकि सतयुग में तो लड़ाई आदि की बात होती ही नहीं। अभी तुम बच्चों को खुशी होती है, हम अपनी राजाई में रहते हैं, राजाई में जाएंगे, वहां डर की कोई बात नहीं होती, टैक्स आदि की बात नहीं। अभी तो टैक्स की भी चिंता रहती है ना, जितना कमाएंगे ज्यादा इतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो उसके लिए भी युक्तियां निकालते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं सतयुग में टैक्स की भी डर नहीं। ये शरीर की फिक्रात यहां रहती है, गाया जाता है फिकर से फारिग किंदा स्वामी सतगुरु, अर्थात हमारे स्वामी ने हमारे सतगुरु ने हमें फिकर से फारिग कर दिया है, मुक्त कर दिया है, फ्री कर दिया है। तुम जानते हो फिकर से फारिग होने के लिए अभी हम इतना पुरुषार्थ करते हैं, फिर 21 जन्म के लिए कोई फिक्रात नहीं रहेगी। बाबा को याद करने से तुम बहुत अडोल रहेंगे। ये सारी क्वालिफिकेशन सुनते जाओ, एक बताया ना, खुश रहेंगे, सेवा का उमंग आएगा, दूसरों को योगी बनाने का उमंग आएगा, अडोल रहेंगे। रामायण की कथा भी तुम्हारे पर है, तुम्हें महावीर बनते हो। जो हनुमान दिखाते हैं ना रामायण में, तो वो कौन है महावीर? कौन है? उमंग से को हम हैं, कैसे, कौन कह सकेगा हम है महावीर? आत्मा कहती है हमको रावण हिला नहीं सकता। तो जिसको अंदर ऐसा दृढ़ निश्चय होगा, अपने पर भरोसा होगा, वो कहेगा वो महावीर हम ही हैं। वो अवस्था पिछाड़ी को आएगी, अभी तो कोई भी हिल जाएंगे, यहां हिलने वाले तो नहीं है ना, सभी महावीर बैठे हैं। बाबा को बोलो, नहीं बाबा हम नहीं हिलेंगे, अड़िग रहेंगे, अड़ोल रहेंगे। अभी तो कोई भी हिल जाएंगे, फिक्रात रहेगी। जब विश्व में लड़ाई लगेगी तब समझेंगे अब टाइम आ गया है। अभी बाहर के लोग भी बोलते हैं ना, विदेश के लोग भी बोलते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, अभी टाइम आ गया है। जितना बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे उतना फायदा होगा। पुरुषार्थ करने का अभी ही समय है, फिर तो क्या होगा, लास्ट में पुरुषार्थ कर पाएंगे? फिर तो विनाश की धूमधाम होगी। अभी तो शरीर में भी मोह रहता है ना। बाबा खुद कहते हैं शरीर की संभाल रखो, अंतिम शरीर है। क्यों कहते हैं शरीर की संभाल रखो? ये हमारा अंतिम जन्म है, अंतिम शरीर है, इसमें ही पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। जीते रहेंगे बाप को याद करते रहेंगे। बाप समझाते हैं बच्चे जीते रहो, जितना जिएंगे उतना बाप को याद कर ऊंच वर्षा लेंगे। अभी तुम्हारी कमाई होती रहती है, इस शरीर से ही तो कमाई करनी है, इस शरीर से ही विकर्म विनाश करना है, इस शरीर से ही भविष्य का पद भी पाना है। शरीर को निरोगी तंदुरुस्त रखो, गफलत नहीं करनी है। खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक रस चलन से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। बीमारी क्यों आती है? कोई अच्छी चीज देखते हैं तो ज्यादा खा लेते हैं, पसंद की चीज नहीं है तो फिर कहेंगे आज भूख नहीं है, आज खाना नहीं खाना है, तो अनबैलेंस हो जाता है, तो बीमारी आती है। यह अमूल्य तन है, इसमें पुरुषार्थ कर देवी देवता बनते हो, तो बलिहारी इस समय की है, खुशी रहनी चाहिए। जितना बाप और वर्षे को याद करेंगे उतना नारायणी नशा चढ़ेगा। जिसको बहुत नशा होता है ना, उमंग में रहते हैं, तो कहेंगे इसको नारायणी नशा है। जैसे देवताएं कितने खुश हैं, बाप की याद से ही तुम ऊंचते ऊंच पद पाएंगे। देखना है हम कितना खुशी हुए, कितना फखुर में रहते हैं। फखुर माने नशा। गरीबों को तो और ही खुशी रहनी चाहिए। क्यों? इतना धन है नहीं जो ज्यादा टैक्स देना पड़े या गवर्नमेंट की रेड लगे, कोई जांच एजेंसी घर पर आ जाए, कोई चिंता नहीं। साहूकारों को तो धन का फिक्र रहता है, फिर उसमें भी गरीबों को तो खुश रहना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, उसमें भी सबसे गरीब बाबा किसको कहते हैं? तुम्हारे में कुमारियों को तो कोई फिक्र नहीं है। हाँ, कोई के मित्र संबंधी गरीब है तो संभाल रखनी पड़ती है, जगाते भी रहना है। बाबा ने देखो कुमारियों को डायरेक्शन दिया है, एडवाइस दिया है कि घर में आवश्यकता है तो मदद करो, साथ में ज्ञान भी दो। अगर नहीं जगते हैं तो फिर कहाँ तक मदद करेंगे? फिर सेवा में लग जाओ। बाबा कहते हैं ना, तुम सर्विसेबल खुद बनो, वास्त्री को रूहानी सर्विस में दो, उनको भी दो ज्ञान में। कहाँ तक कुमारियां संभालेगी उनको भी बोलो समर्पित हो जाओ। समर्पित हो जाओ माना कहीं ना कहीं सेवा में लगो। तुम हो बाबा के मददगार, मदद तो सबको चाहिए ना। तो बाबा भी कहता मुझे भी मदद चाहिए, अकेला बाप भी क्या करेगा, कितनों को मंत्र दे। बाबा कहता है मैं अकेला कितनों को मंत्र दूंगा, हम तुमको देते हैं तुम फिर औरों को देना है, कलम लगाना है। बच्चों को हम लोग सब किस लिए इकट्ठे हुए हैं? बाबा की मदद के लिए। बच्चों को कहते रहते हैं जितना हो सके मददगार बनो, मंत्र देते जाओ। कौन सा मंत्र देंगे? तुम्हारे शास्त्रों में भी है कि सबको पैगाम दिया था कि बाप आए हैं वर्षा लेना है तो बाप को याद करो, देहधारियों को याद नहीं करो। ना देहाभिमानी बनो ना देहधारियों को याद करो, ये है आज का मंत्र। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और वर्षा मिल जाएगा। गीता तो बहुत सुनते सुनाते हैं, उसमें प्रसिद्ध अक्षर क्या है? पूरे गीता का सार एक शब्द में क्या है, एक अक्षर में? मन मना भव। बाप को याद करो तो मुक्ति को पाएंगे। सन्यासी भी ये पसंद करेंगे। मध्याजी भव अर्थात जीवन मुक्ति, उनको तो मुक्ति चाहिए इसलिए मन मना भव पसंद करेंगे। बच्चे बाप के बनते हैं तो बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित है, पतित चल नहीं सकेंगे, वापस घर नहीं जा सकेंगे। ये समझने की बातें हैं। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तो बाप कहते हैं पुरुषार्थ करो तो ऊंच पद मिलेगा। भक्ति तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, तुम जानते हो पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति शुरू हुई। अभी कितनी व्यभिचारी भक्ति है, कितने प्रकार की भक्ति है। मैं हर शहर की हर गांव की रसम रिवाज भी अलग है, हर एक की कुल देवी अलग है, हर एक की इष्ट देव देवी भी अलग है। शरीरों की भी पूजा होती है, वो है भूत पूजा। देवताएं फिर भी पवित्र हैं, परंतु देवताओं की पूजा करते हैं वो तो फिर भी पवित्र हैं, परंतु अभी देवताओं की पूजा करनी है वो तो पवित्र हैं, परंतु इस समय तो सब तमो प्रधान है। कहां गए देवताएं? सब यहीं बैठे हुए हैं, तो पूजा भी तमो प्रधान होती जाती है। अभी बाप को याद करना है। भक्ति का अक्षर कोई नहीं बोलना है, कौन सा नहीं बोलना है? अभी रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है तो बाबा कहते हैं भक्ति का अक्षर ही नहीं बोलना है। कौन सा नहीं बोलना है? हाय राम, ये भी भक्ति का अक्षर है। कई तो बार बार एक हैबिट हो जाती है हाय राम बोलने की। कुछ भी आश्चर्यजनक बात होगी तो भी कहेंगे हाय राम। ऐसे कोई पुकार नहीं करनी है, इसमें कुछ भी उच्चारण करने की बात ही नहीं। अभी बाबा कहते हैं हाय राम तो नहीं कहना है, लेकिन ओम शांति भी घड़ी घड़ी नहीं कहना है। कई तो बार बार ओम शांति ओम शांति। बाबा कहे शांति माना अहम आत्मा शांत स्वरूप है, सो तो है ही, इसमें घड़ी घड़ी क्यों बोलना है? इसमें बोलने की बात नहीं रहती। दूसरे कोई मनुष्य को कहेंगे ओम शांति, वह तो अर्थ जरा भी नहीं समझेंगे। उनको ये तो पता नहीं ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। वो लोग तो ओम की बड़ी बड़ी महिमा करते हैं, वो तो ओम की इतनी व्याख्या करते हैं, लंबी व्याख्या करते हैं। और बाबा ने हमको सार में बता दिया, ओम माना मैं आत्मा शांति माना शांत स्वरूप हूं। तुम तो अर्थ समझते हो, फिर ओम शांति कहना भी फालतू है। माना बाबा का भाव है बार बार मुंह में से नहीं बोलो, उस स्मृति में रहो कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। तो बार बार ओम शांति नहीं बोलो तो क्या बोलो? हाँ, एक दो से ऐसे पूछ सकते हो, शिव बाबा की याद में हो तो बार बार पूछेंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा किसी को। लेकिन बाबा कहते स्मृति दिलानी है। पहले जब यहां आए तो ओम शांति नहीं बोलते थे, सामने मिलते थे एक दूसरे को तो बोलते थे शिव बाबा याद है, ये ओम शांति बाद में निकला। जब दूसरों से अभिवादन करने की बात आई, सेवा की वृद्धि हुई, तो फिर दूसरों से कैसे अभिवादन करना है, तो ओम शांति। जैसे हम भी बच्ची से पूछता हूं, बाबा की सेवा में कौन रहता था? लच्छू दादी रहती थी ना, तो आज शायद लच्छू दादी का दिन भी है, तो बाबा ने याद किया है। जैसे हम भी बच्ची से पूछता हूं ये किसका श्रृंगार करती हो, बोलती है शिव बाबा के रथ का। ये शिव बाबा का रथ है ना, जैसे हुसैन का रथ होता है ना, घोड़े को श्रृंगार करते हैं, घोड़े का अर्थ नहीं समझते हैं, घोड़ा माना ये शरीर। धर्म स्थापन करने वाले जो आते हैं उनकी आत्माएं पवित्र होती है। पुरानी पतित आत्मा धर्म स्थापन कर न सके तो वो किसी के तन में प्रवेश करती है, ज्ञान देती है और अपना धर्म स्थापन करती है। तुम धर्म स्थापन नहीं करते हो, शिव बाबा तुम्हारे द्वारा करते हैं। ये अंडरलाइन है। शिव बाबा जैसे वो धर्म आत्माएं किसी में प्रवेश करके धर्म स्थापन करती है, शिव बाबा हमारे द्वारा धर्म स्थापन करते हैं। तुमको पवित्र बनाते हैं। वो लोग भक्ति मार्ग में बहुत श्रृंगार आदि करते हैं, यहाँ श्रृंगार पसंद नहीं करते। बाबा को श्रृंगार पसंद है, बाबा को सजाते हैं, बाबा को तो हार पहनाना भी अच्छा नहीं लगता था। बाप कितना निरंकारी है, खुद कहते हैं हम बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। पहले सतयुग में होगा श्री नारायण, पहले कौन आएगा, लक्ष्मी आएगी नारायण आएगा, श्री लक्ष्मी से भी पहले श्री नारायण आएगा, वो तो बड़ा होगा ना, नारायण बड़ा होगा, लक्ष्मी उससे थोड़ी छोटी होगी, तो कुछ साल के बाद आएगी। इसलिए श्री कृष्ण का नाम गाया हुआ है, श्री नारायण से भी कृष्ण की महिमा जास्ती करते हैं, क्योंकि वो बड़ा हो गया उसका तो पता ही नहीं है। श्री कृष्ण के ही जन्माष्टमी मनाते हैं, अभी आ रही है जन्माष्टमी, तो बाबा को जन्माष्टमी याद आई। श्री नारायण का बर्थडे नहीं मनाते हैं, श्री कृष्ण का मनाते हैं। ये कोई नहीं जानते कि श्री कृष्ण सो नारायण है। नाम तो बचपन का ही चलेगा ना, वो सतयुग में कृष्ण का नाम बदल के नारायण बना, लेकिन नाम तो बचपन का ही गाया जाता है। फलाने ने जन्म लिया उसका बर्थडे मनाते हैं, इसलिए कृष्ण का ही मनाते हैं। श्री नारायण का किसको भी पता नहीं है। पहले पहले शिव जयंती, फिर है कृष्ण जयंती, फिर राम की जयंती। शिव के साथ गीता का भी जन्म होता है तो गीता जयंती भी मनाते। शिव बाबा आते ही हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, बुजुर्ग अनुभवी रथ में ही आते हैं। कितना अच्छा समझाया हुआ है तो भी किसके बुद्धि में नहीं आता, बाबा कितना स्पष्ट करके क्लियर करके समझाते हैं तो भी किसी की बुद्धि में नहीं आता। बाप कहते ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है, जब मैं आकर सुनाऊं तब तुम भी सुना सकते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भविष्य में एक्यूरेट ये माना देवी देवता बनेंगे। बाबा ने दो तीन प्रकार के साक्षात्कार किए थे। कौन से दो तीन प्रकार के किए थे? विनाश के भी किए, सतयुगी राजाई के भी किए, ये बनूंगा ताज वाला, बनूंगा पगड़ी वाला, बनूंगा। दो चार राजाई के जन्मों का भी साक्षात्कार किया था कि सतयुग में क्या क्या राजाई चलेगी, वो दो चार जन्मों का साक्षात्कार किया था। अभी तुम समझ सकते हो, इन बातों को दुनिया में और कोई समझ नहीं सकते। हाँ इतना समझते हैं, क्या समझते हैं, लोगों को कितना भी ज्ञान समझाओ वो एक लाइन बोल देंगे। क्या बोलेंगे? हाँ अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा, इतना सार में बोल देंगे। लेकिन कौन सा अच्छा कर्म, वो अच्छा कर्म कैसे करे, वो नहीं जानते। अभी तुम पुरुषार्थ ही भविष्य के लिए कर रहे हो, नर से नारायण बनने का। तुम जानते हो हम ये पद पाएंगे, ये खुशी जास्ती उनको रहेगी। हम ये पद पाएंगे, देवता बनेंगे, ये खुशी किसको रहेगी? जो कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करते रहते होंगे उसको खुशी होगी। कहते हैं बाबा हम तो मम्मा बाबा को फॉलो करेंगे तब तो तख्त पर बैठ सकेंगे। ये भी समझ चाहिए कितने हम सर्विस करते हैं और कितना खुशी में रहते हैं। राजा तो बन जाएंगे लेकिन प्रजा भी तो चाहिए ना, तो सर्विस तो करनी पड़ेगी। खुद खुशी में रहेंगे तो दूसरों को भी खुशी में लाएंगे। अंदर कोई खराबी होगी तो दिल खाती रहेगी। कोई कोई आकर कहते हैं बाबा हमारे में क्रोध है, ये भूत है हमारे में, तो बाबा कहते हैं ये फिकर की बात हुई ना, चिंता की बात है कि अभी तक भी क्रोध है, अभी तक भी भूत है। भूत को रहने नहीं देना चाहिए, भूत को रहने नहीं देते हैं ना घर में भी, कुछ ना कुछ कितना उपाय करते हैं। क्रोध क्यों करें, प्यार से समझाना होता है। बाबा कोई पर क्रोध थोड़े ही करेंगे, बाबा कितना प्यार से समझाते हैं। शिव बाबा की महिमा है ना, अब देखो बाबा क्रोध भी नहीं करते हैं और बाबा कितने निर्माण हैं वो सुनो। बहुत फालतू झूठी महिमा भी करते रहते हैं, बाबा कहते हैं मेरी फालतू झूठी महिमा भी करते रहते हैं, मैं क्या करता क्या हूं। मुझे कहते हैं आकर पतित से पावन बनाओ, जैसे डॉक्टर को कहते हैं हमारी बीमारी दूर करो, वो दवाई दे इंजेक्शन लगाते हैं सो तो उनका काम ही है, बड़ी बात थोड़ी ही है। पढ़ते ही है सर्विस के लिए, जास्ती पढ़ते हैं तो जास्ती कमाई करते हैं। बाप को तो कोई कमाई नहीं करनी है, उनको तो कमाई करनी है, तो बाबा कहते हैं तो मेरी बड़ाई कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं मुझे तुम अविनाशी सर्जन भी कहते हो, ये जास्ती महिमा कर दी है। पतित पावन को कोई सर्जन नहीं कहा जाता है, तो कहा मैं पतित पावन हूं, मैं सर्जन नहीं हूं, ये सिर्फ महिमा है। बाबा है तो सही ना, लेकिन अपनी निर्माणता दिखाते हैं, मैं क्या करता हूं कुछ नहीं करता हूं। बाप तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे, बस मेरा पार्टी है तुमको ये समझाने का कि माँ में कम याद करो, जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ये है ही राजयोग का ज्ञान, गीता जिन्होंने पढ़ी है उनको समझाना सहज होता है। तुम पूज्य राजाओं के राजा बनते हो फिर पुजारी बनेंगे, तुमको मेहनत करनी है, तुम विश्व को पवित्र बनाते हो। कितना भारी मर्तबा है, कितना भारी काम दिया हुआ है, सारे विश्व को पावन बनाना पवित्र बनाना ये कितना भारी काम है। तुम सब अंगुली देते हो कलयुगी पहाड़ को पलटाने, कहते हैं ना कृष्ण ने अंगुली से पहाड़ उठाया, सबकी अंगुली लगी, तो बाबा कहते हैं तुम भी अंगुली देते हो कलयुगी पहाड़ को पलटाने। बाकी पहाड़ आदि कुछ भी है नहीं, लेकिन ये पूरी सृष्टि को पवित्र बनाना ये बड़ा काम है, इसलिए उसको पहाड़ उठाने जैसी जिम्मेवारी कहते हैं। किसी को जिम्मेवारी देते हैं ना, कहते हैं तुम पहाड़ उठा लो, तो ये है जिम्मेवारी का काम। तुम जानते हो नई दुनिया आनी है, इसलिए राजयोग जरूर सीखना है। बाप ही आकर सिखलाते हैं सतो प्रधान बनना है, जो कल्प पहले बने होंगे उनको समझाने से जचेगा, माना वो समझेंगे, उनको सही लगेगा। बात तो ठीक कहते हैं, जो कल्प पहले वाले होंगे उसको सब सही लगेगा, समझ में आ जाएगा कि ये सब ठीक कहते हैं। जो हमारे घराने की आत्मा नहीं होगी, कल्प पहले की नहीं होगी, उसके पीछे कितना भी मेहनत करो उसकी समझ में नहीं आएगा। बरोबर बाप ने कहा था मन मना भव, अक्षर संस्कृत है। बाप तो हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुत सरल करके बताते हैं, मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो हम कितने ऊंच धर्म ऊंच कर्म वाले थे, तब तो गायन है 16 कला संपूर्ण, पूरा है ना उसकी महिमा, बोलो संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। अब फिर ऐसा बनना है, अपने को देखना है कहाँ तक हम सतो प्रधान बने हैं, पावन बने हैं, कहाँ तक नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हैं। ये पहले और लास्ट में ये होमवर्क दे दिया, जांच करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाई, वैरायटी बातें सुनाई, और बहुत सरल करके एग्जाम्पल दे दे करके समझाई। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बाप समान निरंकारी बनना है, इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है, रूहानी सर्विस में बाप का मददगार बनना है। दूसरा, अंदर में कोई भी भूत को रहने नहीं देना है, कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है, सबसे बहुत प्यार से चलना है, माता पिता को फॉलो कर, माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। बहुत सुंदर वरदान है। स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एकरस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एकरस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। स्वार्थ आएगा वहां सब कुछ डगमगा जाएगा, कहां एक रस रहेंगे। अब उसका क्लेरिफिकेशन बताया। आजकल एक दो में जो लगाव है वो स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है, स्वार्थ के कारण लगाव है, और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते, इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ, अर्थात स्वार्थ शब्द में स्थित हो जाओ। अर्थात क्या? पहले स्व के रथ को स्वाहा करो। स्वार्थ, बाबा ने उसको क्लियर किया, ये स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे, यही सहज पुरुषार्थ है। और इंपॉर्टेंट पुरुषार्थ भी वही है, स्लोगन। फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। ये अव्यक्त इशारे, इस महीने का होमवर्क तो याद रहता है ना, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ अर्थात पवित्र बनो। उसके अंतर्गत संपूर्ण पवित्रता आप ब्राह्मणों का श्रृंगार है। सदा श्रृंगार की हुई मूरत अर्थात सदा पवित्र स्वरूप में स्थित रहे, बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाओ। सदा ब्रह्मचारी अर्थात संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता वृत्ति को चंचल नहीं बनाए। वृत्ति की चंचलता भी रजिस्टर को दागी बना देती है, इसलिए वृत्ति से भी सदा ब्रह्मचारी बनो। संकल्प पवित्र होंगे तो वृत्ति पवित्र होगी, वृत्ति पवित्र होगी तो व्यवहार भी पवित्र होगा। अच्छा, ओम शांति। होमवर्क याद रहा ना सबको, बाबा ने